जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नितय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराशिमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अस्तु, आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 32। तो ये गद्य के रूप में श्लोक है। परदेवता प्रसाद अधिगत आत्म प्रत्यवर्मर्षेण अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमाम दायम विभज्य भुक्त भोगाम महिषम मृतकम इव सह मवा महाविभूतिम अपहाय स्वयं निहित निर्वेद हृदय गृहीत हरिविहार अनुभाव भगवतः नारदस्य पदवीं एव अनुससार। शब्दार्थ, परदेवता भगवान के प्रसाद अनुग्रह से अधिगत प्राप्त किया, आत्म प्रत्यवर्मर्षेण आत्म साक्षात्कार से अनुप्रवर्त एभ्य जो उसके पथ का सही सही अनुसरण करता है, पुत्रेभ्य अपने पुत्रों को, इमाम यह पृथ्वी, यथादायम उत्तर अधिकार के अनुसार, विभज्य बांटकर, भुक्त भोगाम जिसका भोग अनेक प्रकार से किया, च भी महेशिम रानी मृतकम इव मृत शरीर की भांति, सह सहित महाविभूतिम परमेश्वर अपहाय त्याग कर स्वयं स्वयं निहित पूर्णतया ग्रहण किया हुआ, निर्वेद त्याग हृदय हृदय में गृहीत स्वीकार किया, हरि भगवान की विहार लीलाएं अनुभाव ऐसे भाव में, भगवतः परम साधु पुरुष का, नारदस्य नारद मुनि का पदवीं पद, पुनः फिर एव निश्चय ही अनुससार अनुसरण करने लगा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। तात्पर्य, अपने शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, हृदय के स्वच्छ होते ही संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। हमारे हृदय भगवान की लीलाओं के लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वह भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता, किंतु यदि वह भगवान का फिर से ध्यान धरे तो सांसारिक आसक्ति से सरलतापूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी दार्शनिक, योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात यह संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्मा को ग्रहण करना चाहिए, इस संसार को त्यागने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का कोरा सिद्धांत लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है तो हमें अपने हृदयों में श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर तथा आकर्षक क्यों न हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वह शरीर किसी कामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत भगवत अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान, न तो मुझे धन संग्रह करने की कामना है, न सुंदर स्त्रियों की, न ही मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूं। जो आत्मजीवन में अग्रसर होना चाहता है उसके मार्ग में ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं। इन आसक्तियों की भर्सना आत्महत्या से भी अधिक करनी चाहिए। अतः भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को नारी तथा धन की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इन आसक्तियों से विमुक्त होने के बाद ही महाराज प्रियव्रत महामुनि नारद द्वारा उपदिष्ट नियमों का पालन कर सके। ओम अज्ञान थिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साधुवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचा। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सभी भक्तों के आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ का साक्षात्कार है या शिक्षाओं का साक्षात्कार है वह केवल वैष्णव के आशीर्वाद के माध्यम से ही संभव है। और इसके लिए हम श्रील वक्रेश्वर पंडित प्रभु के जीवन से एक दृष्टांत देखेंगे बाद में। विशेष रूप से श्रीमद् राधेश्याम प्रभु जिन्होंने बहुत परिश्रम से इतना शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करके जिस प्रकार से कोयले को प्रोसेसिंग करके उसको तराश करके हीरा बनाया जा सकता है उसी प्रकार से राधेश्याम प्रभु भी भौतिक जीवन में फंसे हुए युवकों को लेकर और उनको भगवान की भक्ति में प्रभुपद की सेवा में लगाते हैं। और आचार्य रत्न प्रभु भी क्योंकि सबसे पहले मैं खड़गपुर में जब ब्रह्मचर्य से मिला था तो गौर सुंदर प्रभु और आचार्य रत्न प्रभु दो पुणे के पहले ब्रह्मचारी थे। तो आचार्य रत्न प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। हम महाराज प्रियव्रत का जो संदर्भ है उस पढ़ रहे हैं, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। और ये बहुत ही विशेष और प्रेरणादायक संदर्भ है। जैसा महाराज प्रियव्रत का नाम है प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत को अपने व्रत से बहुत प्रेम था, बहुत प्रिय थे उनके व्रत उनको। और उनके व्रतों को देखकर ही स्वयंभू मनु ने उत्तनपाद महाराज जो उनके छोटे भाई थे उनको राज्यकार दे राज्य और राज्य का कारोबार सब दे दिया। कुछ विभाजन नहीं किया, पार्टीशन नहीं किया। और महाराज उत्तनपाद उसको चलाते रहे, उसके बाद ध्रुव महाराज और बाकी परंपरा चलती रही। और सब होने के बाद जब दक्ष महाराज का जन्म हुआ और दक्ष महाराज तपस्या के लिए चले गए तो फिर से प्रियव्रत महाराज के पास स्वयंभू मनु आते हैं। तो हालांकि प्रियव्रत महाराज को अपने व्रत प्रिय थे लेकिन सर्वोत्तम व्रत है कि ऐसे कार्य करना जिससे कि हमारे जो गुरु हैं और जो वैष्णव है वो प्रसन्न हो जाए। तो कई बार व्रत लेते हैं लेकिन व्रतों का जो अभिप्राय है, जो मूल उसका जो कारण है या उद्देश्य है वो भगवान को और वैष्णव को और गुरु को प्रसन्न करना है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अगर हमारे प्रिय व्रत को हमको तोड़ना भी पड़े तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए क्योंकि व्रतों का उद्देश्य है भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना। तो प्रियव्रत महाराज अपने गुरु नारद मुनि ब्रह्मा जी और बाकी लोगों के कहने से राज्य स्वीकार करते हैं और राज्य का जो कार्यभार चलाते हैं जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ है। और उतना करने के बाद फिर उनके अंदर विरक्ति जागृत होती है। तो महाराज प्रियव्रत ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया, 11 अरब वर्ष या 11 करोड़ वर्ष, बहुत बहुत लंबे समय तक राज्य किया। और उसके बाद उनके अंदर विरक्ति जागृत होती है और वे पश्चाताप करने लगते हैं, स्टार्ट रिपेंटिंग। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पश्चाताप है ये शुद्ध भक्ति के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। अजामिल के संदर्भ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है वो जो पहले के दुष्कार्य जो उन्होंने किए हैं, गलत कार्य किए हैं भक्ति में आने के बाद, या भक्ति में आकर के भी जो पूर्व में पहले जो भी गलतियाँ की हैं या अपराध किए हैं उनके प्रति उनको ग्लानि होती है। और इस प्रकार के पश्चाताप से, इस प्रकार के ग्लानि के भाव से वे भक्त भगवान और वैष्णव की शरण और तीव्रता से लेते हैं, डिप्रेस नहीं हो जाते। क्योंकि अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो आदमी डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन डिप्रेस नहीं होते हैं, उससे वे और अधिक शरणागति को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार उसके बारे में सोचकर वे अपने व्यवहार को, चरित्र को और निर्मल बनाते हैं और इस प्रकार भगवान को और अधिक प्रसन्न करते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने कई गीतों में लिखते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता ना ही को पुण्य न लेश। हालांकि वे आध्यात्मिक जगत से आए हुए शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भेजे गए व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वैसा अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज जो उनका ऐश्वर्यशाली जीवन था उसके प्रति एक ग्लानि का अनुभव करते हैं कि मैंने इतना सारा समय ये बहुत एक सुख में बर्बाद कर दिया। और उसके बाद आज के श्लोक में जैसा हम देखते हैं कि भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से उनका विवेक पुनः जागृत हो गया और पूरा जो भोग था, जितना राज्य कार्य था और जो ऐश्वर्य था, भोग और ऐश्वर्य, भोग अर्थात सुंदर पत्नी, ऐश्वर्य अर्थात एक बड़ा राज्य, वो दोनों को उन्होंने त्याग दिया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि मान लीजिए पत्नी मृत हो, रूपा जी लिखते हैं कि मृत शरीर से किसी को आकर्षण नहीं होता, तो उस प्रकार से उन्होंने पूरा राज्य जो निष्कंटक राज्य था, उसमें कोई 5 साल के बाद इलेक्शन होकर के कोई चेंज होने का संभावना नहीं थी, उस प्रकार का राज्य और पत्नी को उन्होंने त्याग दिया। तो भौतिक आसक्ति को त्यागना ये आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए अत्यंत अनिवार्य है, ऐसा गोस्वामियों के जीवन में भी बात है। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। तो जब व्यक्ति को या भक्त को भगवान की कृपा का अनुभव होता है या पता चलता है कि भगवान की कृपा कितनी दुर्लभ है, भक्ति का मार्ग कितना दुर्लभ है, तो बड़े से बड़ी भौतिक चीज भी, बड़े से बड़ी भौतिक आसक्ति भी वो तुच्छ समझकर छोड़ देता है। जिस प्रकार से भरत महाराज के संदर्भ में आता है, जुहा वो मलवत, उनका जो राज्य था, पत्नी थी, बच्चे थे, उसको मल के समान त्याग दिया उन्होंने। जैसे मल त्याग करने के बाद व्यक्ति उसको दोबारा नहीं देखता है, उसी प्रकार से उन्होंने उसको त्याग दिया। तो इस प्रकार का त्याग केवल भक्त के जीवन में ही संभव है, क्योंकि जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है तब तक इस प्रकार का वैराग्य जागृत नहीं हो सकता। कृत्रिम रूप से ज्ञानी और योगी भौतिक चीजों से दूर हो सकते हैं, लेकिन मौका मिलने पर या अवसर आने पर फिर से भौतिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, जैसा कि सौबरी मुनि हुए या फिर विश्वामित्र मुनि हुए, क्योंकि ये कृत्रिम है। लेकिन भक्त क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति जागृत करने के कारण विरक्त होता है, इसलिए भक्त का जो वैराग्य है, भक्त की जो विरक्ति है, वो स्थायी विरक्ति है। तो महाराज प्रियव्रत अपना विवेक पुनः जागृत होने पर उन्होंने उसको त्याग दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जो भोग ऐश्वर्य के प्रति जो त्याग है, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, उसको त्यागना अनिवार्य है, क्योंकि इन आसक्तियों की भर्सना आत्महत्या से भी अधिक करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का वो श्लोक है, निष्किंचनस्य भजन भगवान भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमसो यद सागरस्य, आगे क्या, संदर्शनम विषयिना अथ योषिता हा हंत हंत विषभक्षण। तो इनकी तुलना जो स्त्री से या धन से, ऐश्वर्य से जो है, वो आत्महत्या से भी अधिक की जाती है, क्योंकि इनके भोग से व्यक्ति का जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव से व्यक्ति विक्षेपित हो जाता है भोग और ऐश्वर्य के कारण। तो आत्महत्या करने से तो केवल शरीर का नाश होता है, लेकिन चेतना जो है वो बनी रहती है, लेकिन भोग करने से उसकी जो सेवा भावना है उसमें विक्षेपित हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है उसका जो चेतना है वो अपहृत हो जाती है, वो व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि नहीं रख सकता है, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपहृत चेतसाम हो जाता है। तो व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि भक्ति में प्रगति करने के लिए अनिवार्य है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि चाहिए, और व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि के लिए भोग ऐश्वर्य से अनासक्ति परम आवश्यक है। तो ये जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति विरक्ति है, ये कैसे आती है? प्रभुपाद जी इसमें शुरू में बताते हैं कि ये भगवान की कृपा से आती है। व्यक्ति को भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए, और उनके चरण कमलों का चिंतन करके अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए, और स्वच्छ हृदय में फिर भगवान की लीलाओं, भगवान जो है अपनी लीलाएं वहां पर प्रदर्शित करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वच्छ हृदय में, यानी कि जिसका मन और हृदय शुद्ध है, वो व्यक्ति भगवान की लीलाओं का उसी प्रकार दर्शन कर सकता है जिस प्रकार हम टीवी के ऊपर कुछ चलचित्र इत्यादि देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं या कुछ देखते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति भगवान की लीलाओं का अनुभव कर। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सोत्रमाई की जय, श्री श्री गौरता की जय। तो भौतिक आसक्ति का त्याग करने के लिए हृदय को स्वच्छ करना है, हृदय को स्वच्छ करने के लिए वहां पर भगवान के चरण कमल का स्मरण या भगवान को वहां पर विराजमान करना है। लेकिन भगवान को विराजमान करने के लिए भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। जब हमारे पास कुछ चीज है तभी उसको हम कहीं पर स्थापित कर सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कैसे उसको रखेंगे। तो भगवान को विराजमान करने के लिए भगवान चाहिए, और भगवान कभी भी किसी को साक्षात रूप से प्राप्त नहीं होते, भगवान केवल अपने आप को भक्तों के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जनों के बारे में हम थोड़े दिन पहले सुन रहे थे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार गुंडीचा मार्जन में भगवान वर्ष में एक हफ्ते या 8 दिन के लिए ही रहते हैं, इसलिए मंदिर और वेदी पूरी तरह से गंदी हो जाती है। हम भी एक दो बार गए थे तो साफ कर रहे थे, बहुत सफाई का बहुत स्कोप है वहाँ पर क्योंकि एक साल तक उसकी सफाई नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखा है किस प्रकार से हृदय को शुद्ध करना है, प्रयास करना है, और महाप्रभु भी साथ में सफाई करते हैं। तो ये जो महाप्रभु का दिया गया मार्ग है चेतो दर्पण मार्जनम, उसको पालन करने से हृदय शुद्ध होते हैं। लेकिन हृदय शुद्ध करते करते भी भगवान की प्राप्ति हमें साक्षात रूप से अपने आप से नहीं होगी, उसकी प्राप्ति भगवान के भक्त के माध्यम से ही होती है, ये भी महाप्रभु का सिद्धांत है। तो यहाँ पर रूपा जी कहते हैं मन मनाभ मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कार। भगवान भी कहते हैं, भगवान इस श्लोक को गीता में 2 बार कहते हैं, मन मनाभ मत भक्तो, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय। तो भगवान का आदेश है कि मुझे अपने मन में धारण करो। तो कभी लग सकता है कि शायद भगवान को साक्षात मन में धारण कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन कर रहा था। तो जो ये श्लोक है सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, इसके तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि बिना भक्तों के संग के, बिना भक्तों के संग में श्रवण किए बिना हम भगवान में अपना मन नहीं लगा सकते। मन में, हमारे मन को भगवान में लगाने के लिए भक्तों से श्रवण करना ही एकमात्र माध्यम है। 7वें अध्याय में, गीता के 7वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं मई आसक्त मना पार्था युंजम योगम मदाश्रय, और उसके बाद पूरा याद नहीं रहता। तश्रुणु कहते, भगवान कहते हैं कि आप मेरा इसके बारे में श्रवण करो। प्रभुपाद जी इसमें प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक कोट करते कि केवल भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करने से ही मन भगवान में आसक्त हो सकता है। तो हालांकि भगवान कहते हैं मन मना, मन को मुझ में लगाओ, लेकिन उसका जो मार्ग है वो है कि भक्तों के साथ रहकर, भक्तों की शरण लेकर के भक्तों से श्रवण किया जाए, अन्यथा मन भगवान में नहीं लग सकता। दूसरा कहते हैं मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। लेकिन आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यह कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। इसका अर्थ क्या, भगवान कहते हैं मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, और आदि पुराण में कहते हैं कि जो कहता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त। तो हालांकि ये आदेश लगता है कि शायद हम स्वयं ही कर पाएंगे, लेकिन इस आदेश में निहित है कि इस आदेश का पालन केवल भक्तों के संग में, भक्तों की शरण लेकर के ही किया जा सकता है। उसके बाद ही हम भगवान में मन लगा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तीसरा कहते हैं मध्या जी मेरा अर्चनम करो, मेरा पूजा करो। लेकिन अगर हम विग्रह से वगैरह जाएंगे तो सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवाया माँ नियोजय, सीधे सीधे भगवान की पूजा नहीं कर सकते। जब भगवान को उपचार अर्पण करने से पहले वह सारे उपचार गुरु को, फिर परम गुरु श्रील प्रभुपाद को अर्पण करते हैं, फिर गौर निताय को अर्पण करने के बाद फिर राधा वृंदावन चंद्र को अर्पण करते हैं। तो हालांकि भगवान कहते हैं मध्या जी मेरी पूजा करो, लेकिन ये पूजा का कार्यक्रम भी हम सीधे सीधे नहीं कर सकते। फिर कहते हैं माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, लेकिन नमस्कार करने के लिए भी क्या करना होता है, वंदे हम श्री गुरु, पहले गुरु जी को वंदे हम श्री गुरु, श्री गुरु वैष्णवांश, पहले गुरु फिर अनेक गुरु फिर वैष्णवांश फिर आगे सड गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। तो ये चारों में से कोई भी कार्य व्यक्ति सीधे सीधे नहीं कर सकता है। तो हालांकि लगता है भगवान का साक्षात आदेश है, लेकिन इस आदेश के अंदर भी भगवान ने मार्ग वही दिया है कि भक्तों की शरणागति के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदो गुरु पाद आश्रय, सबसे पहले गुरु के पाद का आश्रय लेना है, उसके बाद उनके आश्रय में गुरु हमको प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, किस प्रकार से भगवान को मन में बिठाना है, हृदय में लेना है। और गुरु की कृपा से ही ये संभव है कि व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। महत कृपा अनुगामी भगवत कृपा, तो ये सिद्धांत है कि केवल महत के माध्यम से, एक वैष्णव के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, वैष्णव की कृपा 2 प्रकार से व्यक्ति प्राप्त करता है। एक है कि जब वैष्णव उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई वैष्णव किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे তো বৈষ্ণবের আবেদন কৃষ্ণ দয়াময় তাহার পামার প্রতি হবে না সাথে উস ব্যক্তি জিসকে লিয়ে প্রার্থনা করতা হয় কোই এক প্রগত ভক্ত ফির ভগবান উসকে উপর কৃপা বরসাতে হ্যাঁ। প্রভুপাদ জি কে শিষ্য নে একবার উনকো পুছা কি হমকো ইতনা বড়া ইয়ে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হুয়া হ্যায় ভগবান কা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হুয়া হ্যায় ভক্তি করনে কা অবসর প্রাপ্ত হুয়া হ্যায় হমারে অন্দর ক্যা যোগ্যতা থি। তো প্রভুপাদ জি নে বতায়া কি আপকি কোই যোগ্যতা নেই থি, মানে আপকি যোগ্যতা কা নির্মাণ কি। তো প্রভুপাদ জি কি প্রার্থনাও সে আর যো প্রভুপাদ জি নে উনকো সেবা করনে কা অবসর দিয়া, তো এক ওর ভগবান সে প্রার্থনা আর প্রার্থনা আর দূসরি ওর সেবা করনে কা অবসর, ইয়ে দো প্রকার সে বৈষ্ণব কি কৃপা হমকো প্রাপ্ত হতি হ্যায় আর সাথ সাথ উনসে শ্রবণ করনে কা অবসর প্রাপ্ত হতি হ্যায়। তো মুঝে যাদ হ্যায় মে পহলি বার জব খড়গপুর মে থা তো আচার্য রত্নপুর মে এক রেড কালার কা রাধা কুঞ্জ বিহারী কে কার্ড পর লিখ করকে দিয়া থা, মে দেয়ার লর্ডশিপ শ্রী শ্রী রাধা কুঞ্জ বিহারী বিস্টো দেয়ার চয়েসেস্ট ব্লেসিংস অপন ইউ। তো কিউকি প্রভু জি নে প্রার্থনা কি তো ও কার্ড কা হি অসর হ্যায় কি আজ মে কুছ ভক্তি কর পা রহা হুঁ, ইয়ে বহুত আবশ্যক হ্যায় ইসকে আলাবা সম্ভব নেই। গুরু আর বরিষ্ঠ বৈষ্ণব জব তক হমারে লিয়ে প্রার্থনা নেই করতে আশীর্বাদ নেই করতে আর সেবা মে নেই লাগাতে তব তক হম কৃপা প্রাপ্ত নেই কর সকতে, আর জব তক ইস প্রকার কি কৃপা ভগবান কি কৃপা নেই হতি হ্যায় তব তক ভৌতিক আসক্তি স্থায়ী রূপ সে হম ছোড় নেই পায়েঙ্গে। আর বিনা বৈষ্ণব কে আগর হম মন বনাব মদভক্ত করনে কা প্রয়াস ভি করে তব ভি ভগবান কি বাস্তবিক কৃপা প্রাপ্ত নেই হতি। মান লিজিয়ে কিসি প্রকার সে কোই ব্যক্তি এক পারিবারিক রূপ সে ইয়া কিসি প্রকার কে পুণ্য কর্ম কে কারণ ভগবান কি ভক্তি সিধে সিধে করনে ভি লাগে, ভগবান কা বিগ্রহ ঘর মে লেকর কে আকর কে পূজা করনে লাগে, ভগবান কো প্রণাম অর্পণ করনে লাগে, লেকিন ভক্তো কা সঙ্গ নেহি করতা হ্যায় আর গুরু কি কৃপা প্রাপ্ত নেহি কিয়া হ্যায় তো ভি উসকো ভগবান কা প্রেম প্রাপ্ত নেহি হোগা। তো একবার মে গৌর কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহারাজ সে পুছ রহা থা, তো উদাহরণ দে রহে থে কি জিস প্রকার সে এক ধান জব হোতা হ্যায় চাওল, তো উসকি খেতি করনে কে লিয়ে চাওল কো জমিন মে ডালনে সে উসসে পৌধা নেই উগতা হ্যায়, মানে খেতি নেই কিয়া লেকিন মহারাজ কে শব্দো কে বতা রহা হুঁ। ও জব উস ছিলকে কে সাথ হ্যায় ধান্য, মতলব চাওল কে উপর ছিলকা হ্যায় ধান্য হ্যায়, উস ধান্য কো জব জমিন মে বোয়া জাতা হ্যায় তবি উসসে পৌধা অঙ্কুরিত হোতা হ্যায় অন্যথা নেই হোতা। তো হালাকি চাওল হ্যায় ছিলকে সে পৌধা নেই নিকলতা, লেকিন জব চাওল ছিলকে কে অন্দর হ্যায় তবি উসসে পৌধা নিকলতা হ্যায়। তো উসি প্রকার সে কে রহে থে কি কোই ব্যক্তি আগর পুণ্য কর্ম হোনে কে কারণ ইয়া কিসি প্রকার কা এক মন মে বিচার হোনে কে কারণ আগর ভক্তিময় কার্যো মে বাহারী রূপ সে লগ ভি যায় তো ভি উসকো ভগবান কি বাস্তবিক কৃপা আর ভগবান কা প্রেম প্রাপ্ত নেই হোগা, ইয়া কেবল একই মাধ্যম সে আতা হ্যায় গোপী বর্তুর পদ কমল ওর দাস ভক্তোঁ কে আশ্রয় মে রহ করকে গুরু কে আদেশ অনুসার জব সেবা করতে তবি ভগবান কি কৃপা প্রাপ্ত হতি হ্যায়। তো ইসকো উদ্গত করনে কে লিয়ে কই সারে উদাহরণ হ্যায়, বিশেষ রূপ সে তিন উদাহরণ একই লাইন কে হ্যায় উসকো হম দেখেঙ্গে, উসকে বাদ থোড়া বক্রেশ্বর পণ্ডিত কে বারে মে চর্চা। তো শ্রীরঙ্গম মে শ্রীপদ যমুনাচার্য যে ওহা কে বড়ে আচার্য থে জিনকে বারে মে প্রভুপাদ জি কোট করতে হ্যায় কি ও কোন সা শ্লোক ইসমে ও কহতে হ্যায় কি জব সে মেরা মন জো হ্যায় ভগবান কে চরণ কমলো কি ওর আকর্ষ্ট হুয়া হ্যায় এই সংসার কা ভোগ আর ঐশ্বর্য উসকো দেখকর মুঝে যদবতী ওম চিত্ত কৃষ্ণ পদারবিন্দ। তো উসকো প্রভুপাদ জি বহুত বার কোট করতে দিখানে কে লিয়ে কি কিস প্রকার সে ভগবান কি সেবা কা উঁচা স্বাদ মিলনে কে বাদ বাকি সারি চিজে নিঃস্বাদ হো জাতি। তো যমুনাচার্য জি জব বচপন মে থে গুরুকুল মে পড়তে থে তো উস সময় পর জো ওহা কা রাজা থা উসকা জো পণ্ডিত থা রাজ পণ্ডিত কোলাহল, তো কোলাহল কা থা কি জো ভি উনকে সাথ বাদ বিবাদ করতা থা আর উনসে হার যাতা থা তো রাজা উনকো কর লাগাতা থা, হালাকি ব্রাহ্মণ কে উপর কর নেই লাগানা চাহিয়ে লেকিন কর লাগাতা। তো ইয়ে লম্বি কথা হ্যায় লেকিন কোলাহল কো যমুনাচার্য পরাস্ত কর দেতে হরা দেতে বাদ বিবাদ মে আর উসকে বাদ রাজা উনকো আধা রাজ্য দে দেতা হ্যায়। তো হালাকি যমুনাচার্য গুরুকুল কে বালক থে লেকিন और गुरुकुल में ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हुए अध्ययन कर रहे थे जैसे प्रियव्रत महाराज कर रहे थे, लेकिन जैसे प्रियव्रत महाराज को राज्य प्राप्त हुआ उसी प्रकार से यमुनाचार्य को भी आधा राज्य प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्त होने के बाद यमुनाचार्य उसके ऊपर शासन करने लगे और राज्य का विस्तार करने लगे, लेकिन क्योंकि शुरू में गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनके जो दादाजी थे नाथ मुनि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की रंगनाथ से कि ये जो यमुना है ये क्योंकि क्यों उनका नाम यमुनाचार्य रखा था क्योंकि उनके माता पिता जब वृंदावन में आए थे मथुरा में आए थे प्रार्थना करने के लिए उसके बाद उनका जन्म हुआ इसलिए उनका नाम यमुना रखा। हालांकि यमुना दक्षिण भारत में नहीं बहती है लेकिन मथुरा में प्रार्थना करने के बाद उनकी प्राप्ति हुई। तो उनके गुरु नाथ मुनि ने उनके लिए प्रार्थना की और उनके एक शिष्य थे राम मिश्रा। तो राम मिश्र जब जाकर के उनकी सेवा करते हैं और यमुनाचार्य जो तुड़ू वलई करके एक शाख है उसको लेते हैं, बाद में जब राम मिश्र उनको लेकर के जाते हैं बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जो खजाना आपके दादाजी ने आपके लिए रखा है और मैं आपको वो सौंपना चाहता हूँ। तो फिर जब वे गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं 12वें अध्याय में जब आते हैं तब यमुनाचार्य को पुनः स्मरण होता है और फिर अपना पश्चाताप वो व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य हालांकि पहले गुरुकुल में थे, बाद में भोग विलास में लिप्त हो गए, लेकिन केवल एक वैष्णव की प्रार्थना और वैष्णव की कृपा के कारण उनके माध्यम से ही उनकी स्मृति पुनः जागृत हुई। अब यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम गए एक उत्सव के समय, तो वहां पर रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के साथ रहते थे। यादव प्रकाश मायावादी अध्यापक थे, मायावाद जो मायावाद विषय था उसको पढ़ाते थे। तो जब श्रीपाद यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को देखा यादव प्रकाश के साथ, तो वे समझ गए कि ये तो बहुत विलक्षण व्यक्ति है, वैष्णव है। तो यमुनाचार्य ने वरदराज स्वामी से प्रार्थना की कि ये जो रामानुज है इनका जो यादव प्रकाश के साथ संग है वो समाप्त हो जाए और ये आपकी भक्ति में लग जाए। तो हालांकि रामानुजाचार्य रामानुज हैं, लक्ष्मण हैं, लेकिन फिर भी ये केवल यमुनाचार्य की प्रार्थनाओं के बल पर उनका जो दुस्संग था, जो यादव प्रकाश संघ था, वो समाप्त हुआ और फिर रामानुजाचार्य आकृष्ट हुए यमुनाचार्य के। और साथ साथ ही रामानुजाचार्य ने कांचीपूर्ण की बहुत सेवा भी की, कांचीपूर्ण से प्रभावित होकर कांचीपूर्ण की सेवा करते थे और उनके कहने पर एक पास के कुएं से एक घड़ा पानी ला करके वरदराज के अभिषेक के लिए हमेशा देते थे हर दिन। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करने से और एक महान भक्त की प्रार्थना करने से ही उनको भक्ति का मार्ग पुनः प्राप्त हुआ। फिर रामानुजाचार्य एक बार श्रीरंगम में आचार्य बनने के बाद वहां पर एक भगवान का उत्सव चल रहा था, तो उस उत्सव में उन्होंने देखा कि सब लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति है जो एक बाएं हाथ से एक छाता पकड़ा हुआ है एक स्त्री के ऊपर और दाहिने हाथ से चामर कर रहा है। तो इतना विचित्र दृश्य था कि सभी लोग उत्साहपूर्वक भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के सामने कीर्तन नृत्य कर रहे हैं और ये व्यक्ति, वो स्त्री भगवान का दर्शन कर रही है लेकिन ये व्यक्ति स्त्री का दर्शन कर रहा है। तो रामानुजाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि कितना उनका तीव्रता है, कितना एब्जॉर्प्शन है। तो उन्होंने दशरथी को बोला, इनको बुला करके लेके आइए। तो दशरथी गए तो 5 मिनट तक तो वो सुना ही नहीं, वो इतना समाधि में था। उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई साधु पुरुष बुला रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि रामानुजाचार्य ने बुलाया तो वे आए वहाँ पर। और रामानुजाचार्य ने पूछा कि आप इतना उत्सव में भगवान को नहीं देख करके आप स्त्री को देख रहे हैं? तो बोले कि नहीं, वो स्त्री इतनी सुंदर है, उसकी आँखें इतनी सुंदर हैं कि मैं उनके प्रति इतना आकर्षित हूँ कि मुझे दुनिया में और कोई चीज़ आकर्षित नहीं लगती। तो रामानुजाचार्य ने कहा, अगर आपको इससे अच्छी और इससे सुंदर कोई चीज़ दिखेगी तो अब आप क्या करें? तो उन्होंने कहा, मैं उसको त्याग कर उनके प्रति आसक्त हो जाऊँ। तो रामानुजाचार्य ने उनको शाम को मंदिर आने के लिए कहा और उनके आने पर रंगनाथ जी को विशेष प्रार्थना की, क्योंकि भगवान का दर्शन तो हम भी हर समय करते हैं लेकिन फिर भी हमको पता है कितना काम वासना के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप इनका मन आपकी ओर आकर्षित कीजिए, ये एक भौतिक सुख के प्रति, एक सामान्य स्त्री के प्रति इतने आसक्त हैं, इनको आप इस प्रकार से दर्शन दीजिए, इस प्रकार से अपना जो सौंदर्य है उसको दिखाइए कि इनका हृदय आपकी ओर आसक्त हो जाए। तो ये रामानुजाचार्य की प्रार्थना का फल था कि जब ये धनुर्दास, इन्होंने जब रंगनाथ जी का दर्शन किया तो रंगनाथ जी के सुंदर मुख कमल देखकर, उनके कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें देखकर पूर्ण रूप से आसक्त हो गए और तुरंत ढूंढने लगे कि मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, और तुरंत एक क्षण में ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से बिना वैष्णव के छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के कोई भी भौतिक चीजों से विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका मार्ग एक ही है कि भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त की जाए, और भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे श्रवण करना और भगवान की सेवा हृदयपूर्वक करना ये परम आवश्यक है। दूसरा प्रभुपाद जी इसमें कोट करते हैं कि सवई मना कृष्ण पदा अरविंदे। तो मैं इसका तात्पर्य पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सवई मना कृष्ण पदा अरविंदे, मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना ये बिना गुरु के प्रशिक्षण के संभव ही नहीं है। तो हालांकि लगता ऐसा है कि सीधे सीधे मन को लगाएंगे, लेकिन उसमें नहीं थे, और उसमें प्रभुपाद जी आधो गुरु पादा शैकुट करते। तो इस प्रकार से बिना वैष्णव के कृपा के, बिना गुरु की कृपा के, हमको भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होना और भगवान को मन में बिठाना, भगवान को हृदय में बिठाना, या भगवान के लीलाओं का हृदय में अनुभव करना, ये कदापि संभव नहीं। तो आज शिला वक्रेश्वर पंडित जी का त्रुभाव दिवस है, त्रुभाव है। तो वक्रेश्वर पंडित शिला श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। कुछ जगह पर लिखा गया है कि ये अनिरुद्ध जी के अवतार थे, और उनके जो जो शिष्य हैं गोपाल गुरु गोस्वामी और उनके शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी, वो कहते हैं कि वो तुंग विद्या सखी के अवतार थे। तो दोनों भी हो सकते हैं। तो महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, और महाप्रभु के साथ जो श्रीवास आंगन में कीर्तन नृत्य होता था उसमें वो सम्मिलित होते थे। उनका विशेष रुचि, उनका जो विशेष योगदान था वो था नृत्य करना, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो है चैंटिंग डांसिंग एंड फिस्ट, वी कैन चैंट डांस एंड फिस्ट अवर वे बैक होम बैक टू गार्डन। तो महाप्रभु अपने नृत्य से सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। महाप्रभु के पास जो अस्त्र था, कोई धनुष बाण नहीं है जैसा भगवान राम के पास है, कोई चक्र नहीं है जैसा नारायण या विष्णु के पास है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा अस्त्र उनका स्वयं का सौंदर्य है और उनके पार्षद संगो पांगास्त्र पार्षद। तो अस्त्र और शस्त्र नहीं है बाहरी रूप से, लेकिन उनका जो सौंदर्य है, उनका जो नृत्य है और उनका जो पार्षद है, वही उनके शस्त्र है। और उन अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु लोगों के शरीर का नाश नहीं करते हैं, लोगों के अंदर जो भौतिक चेतना है, जो विषय भोग करने की इच्छा है, उसका नाश करते हैं। तो महाप्रभु का नृत्य तो इतना हम देखते हैं कि पूरा दक्षिण भारत में महाप्रभु गए, नृत्य किया, झारखंड में नृत्य किया, नृत्य के माध्यम से प्रचार किया। तो वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाते थे, चैतन्य महाप्रभु गाते थे, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे, और वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल पकड़ करके आवेदन करते थे कि 10,000 गंधर्व आप मुझे दे दीजिए, जो कि आपका कीर्ति और कीर्तन का महिमा का गुणगान करेंगे, तब मैं कुछ नृत्य कर सकता हूँ। तो ये वक्रेश्वर पंडित प्रभु का उत्साह था, और महाप्रभु कहते थे कि मेरे पास आप एक पंख के समान हैं, आप एक पंख हैं, मुझे एक और व्यक्ति आपके जैसा मिल जाए, उत्साह ही व्यक्ति, तो मैं तो हवा में उड़ सकता हूँ, तो पक्षी के समान उड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित का बहुत सराहना करते थे, और वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे, और बहुत सारी लीलाओं में उनका वर्णन आता है प्रसाद के समय भी, और विशेष रूप से जब हरिदास ठाकुर की लीला होती है अंत्य लीला, तो हरिदास ठाकुर जब देह त्याग करने के लिए निवेदन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं, सर्व दामोदर गाते हैं, और वक्रेश्वर पंडित प्रभु वहाँ पर नृत्य करते हैं। और फिर जब हरिदास ठाकुर देह त्याग करते हैं, तो जब प्रोसेशन में लेके जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, उनके पीछे वक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य करते हैं, और फिर जब उनकी समाधि बनाई जाती है तब वक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से उनके नृत्य का बहुत विस्तृत वर्णन है। और जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती थी, तो माधव घोष और गोविंद घोष इनकी जो कीर्तन पार्टी थी, इस कीर्तन पार्टी में वक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य करते थे। तो वे अपने नृत्य के लिए बहुत ही फेमस है। तो वक्रेश्वर पंडित प्रभु एक बार जब नवद्वीप में आए, तो नवद्वीप में देवानंद पंडित करके एक व्यक्ति थे, तो उनका भी आविर्भाव तिरुभाव दिवस इसी समय में आता है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उस समय वर्णन करने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन देवानंद पंडित जो है श्रीमद् भागवतम से ही पाठ करते थे, श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही व्याख्यान करते थे, और उनका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते थे। लेकिन इतना भागवतम पढ़ने के बाद, व्याख्यान देने के बाद भी नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, फिर भी उनको भागवतम का सार पता नहीं, इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु को साधारण व्यक्ति समझते थे। और एक बार उनके शिष्यों ने शिवाज ठाकुर के प्रति अपराध किया, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित से इतने क्रोधित हो गए। तो देवानंद पंडित हालांकि भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान का ग्रंथ अवतार है, कृष्णे स्वधामो पगते, भगवान कृष्ण चले जाते हैं तो भागवतम का आगमन होता है, तो फिर भी उनके हृदय में भगवान के प्रति किसी प्रकार का प्रेम जागृत नहीं होता। तो भले ही कोई भागवतम का अध्ययन करे, या विग्रह की सेवा करे, या भगवान का नाम भी ले, या धाम में वास करे, लेकिन जब तक एक महत् कृपा नहीं है, भक्त की कृपा नहीं है, तब तक ये साधन करने से भी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। तो भागवतम का अध्ययन करते हुए भी उनको भागवतम का जो मूल संदेश है, जो उसका जो सार है, उसका अनुभव नहीं हुआ। उस समय पर थोड़े समय के बाद वहाँ पर वक्रेश्वर पंडित वहाँ पर आए और देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित जी की बहुत सेवा की। वक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य करते थे तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते थे और एकत्रित होकर के लोग पास पास आने लगते हैं, भारत में देखे तो देवानंद पंडित एक छड़ी लेकर के क्राउड कंट्रोल करते थे और वक्रेश्वर पंडित जब धूल में गिर जाते थे, क्योंकि वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो पूरे अष्ट विकार उनके शरीर में दिखते थे, पूरा अश्रुधारा बहती थी और रोमर्स खड़े होते थे। तो देवानंद पंडित उनको लेकर के फिर धूल को हटाते थे और लोगों को दूर रखते थे। तो देवानंद पंडित ने इस प्रकार जब वक्रेश्वर पंडित की सेवा की और वक्रेश्वर पंडित से श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में सुना, तब उनको चैतन्य महाप्रभु कौन है वास्तव में उसका साक्षात्कार हुआ। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास देने के बाद फिर से आते हैं तो उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं बुलाते हैं देवानंद पंडित को कि हालांकि आपने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया, लेकिन आपने वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने से मेरी कृपा प्राप्त की। और वो कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित के हृदय में भगवान नृत्य करते हैं, और क्योंकि भगवान हृदय में नृत्य करते हैं इसलिए वक्रेश्वर पंडित का शरीर भी नृत्य करता है, और वक्रेश्वर पंडित के शरीर में सारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका निवास है, इसलिए जहाँ भी वक्रेश्वर पंडित रहते हैं वहाँ पर सारे तीर्थ स्थल वहाँ पर प्रकट होकर रहते हैं। और क्योंकि तुमने वक्रेश्वर पंडित की कृपा प्राप्त की है इसलिए आज मैं तुम्हें कृपा प्रदान करूँगा। तो ये वक्रेश्वर पंडित का थोड़ा संक्षिप्त विवरण है, लेकिन देवानंद पंडित का जो कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब इनका आविर्भाव त्रिभुवा दिवस अभी आएगा उस समय श्रवण करेंगे कि किस प्रकार इतना, और महाप्रभु के आदेश भी, महाप्रभु आदेश देते हैं किस प्रकार से भागवतों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और उसका उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत सारी बाधाएं होती हैं नृत्य करने में। शुरू में तो नृत्य करते हैं, बाद में शरीर साथ नहीं देता है, और कभी कभी शरीर भी साथ में देता है तो मन में उत्साह नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं डांस करना, पीडीसी लोग डांस करेंगे हम लोग थोड़ा तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो नृत्य करना है ये महाप्रभु का तीन मुख्य जो चीज़ें महाप्रभु ने दी, कीर्तन, नृत्य और प्रसाद, उसमें से एक है चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। 33% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत ही विशेष दिन है, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करें और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करके हम भगवान की कृपा करें। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्री वक्रेश्वर पंडित प्रभु की, श्री वक्रेश्वर पंडित रोबा महामहोत्सव की। करेक्शन I think yes. Okay. No. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktavrinda ki.